वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते भई अर्हन्तादि महान जो विद्यादि सागर सुती जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितेशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयानी सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं सतत केवल ज्ञान पाने। बोली भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। निरंतर अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए सच्चाई के रास्ते पर चलने का प्रयत्न कर रहे हैं। सच्चाई के रास्ते पर चलने से पहले हमारी दृष्टि निर्मल होनी चाहिए। हमें विवेक पूर्वक अपने सारे कार्य संपन्न करना चाहिए, तब हम ठीक ढंग से सच्चाई के रास्ते पर चल करके और सच्चा अच्छा जीवन प्राप्त कर पाए। सच्चाई के रास्ते पर जब हम चलें तो हमारा फर्ज है कि हम सच बोलें। सच्चाई के रास्ते पर हम सच बनने के लिए निकले हैं, इसलिए जरूरी है हमारा सच बोलना। सच बनने के लिए सच बोलना है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है गृहस्थ जीवन में भी और साधु के जीवन में भी। दोनों को असत वचन के त्याग रूप व्रत, क्योंकि व्रत हमेशा निवृत्ति रूप होते हैं। हमारे जैन आगम में प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का ऐसा संतुलन और सामंजस्य बनाया गया, क्या करना और क्या नहीं करना। जो नहीं करना वह निवृत्ति, फिर उस नहीं करने को सार्थक करने के लिए जो करना वो प्रवृत्ति। हमारी प्रवृत्ति भी निवृत्ति मूलक है। हम जो कुछ भी करते हैं वो इसलिए नहीं करते हैं कि वो करना अनिवार्य है, हम तो सिर्फ इसलिए करते हैं जिससे कि वह करना धरना भी छूट जाए। हम कर्तृत्व के भाव से, भोक्तृत्व और स्वामित्व के भाव से मुक्त होने के लिए प्रवृत्ति करते हैं। सच व्रत दो प्रकार का होता है, अनुव्रत के रूप में शावक के द्वारा पालन किया जाता और महाव्रतों के रूप में मुनि महाराज उसका पालन करते हैं। लेकिन इतना ही नहीं है, सत्य धर्म भी है जिसका भी पालन करना, झूठ नहीं बोलना आंशिक रूप से या स्थूल रूप से, यह तो सत्य अनुव्रत है, और पूर्ण रूप से झूठ का त्याग कर देना मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से 9 कोटि की शुद्धि पूर्वक, यह तो महाव्रत हो गया। लेकिन बोलेंगे कैसे, यह भी बड़ा मुश्किल काम है। जब 6 महीने 2 महीने 3 महीने का ऐसा करके और 13 माह का मौन व्रत की साधना शुरू में आचार्य महाराज की कृपा से उनकी आज्ञा से करी, और जब उसके बाद फिर मन हुआ कि और शायद मौन व्रत मिल जावे, सो आचार्य जी के चरणों में निवेदन किया कि भगवान थोड़ा सा महीने भर का 2 महीने का और मौन व्रत दे दे। तब क्या कहा था उन्होंने, मौन की साधना हो गई, अब बोलना सीखो। बोलना सीखना पड़ता है, वाग दीक्षा भी एक दीक्षा लेने के बाद दी जाने वाली दीक्षा है। कैसे वचन बोलेंगे आप, सत्य धर्म का पालन करते हुए, भाषा समिति का पालन करते हुए, और हो सके अपने जीवन में तो वचन के प्रयोग करने की इच्छा को ही जीतने की साधना करना, वचन गुप्ति को धारण करना। ये पंचम काल जिसमें कि तीनों प्रकार की जो उत्कृष्ट गुप्ति की साधना है वो करने योग्य तो उपादान में क्षमता नहीं मिली, ना निमित्त ही है, पर फिर भी वचन गुप्ति नहीं बोलेंगे, अशुभ कार्य नहीं करेंगे, अशुभ विचार नहीं करेंगे, बस मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्ति को छोड़ देने से जो अपने भीतर मन वचन काय की गुप्ति होती है वही संभव है। सब प्रकार से शरीर की चेष्टाएं सो छोड़ करके जो काय गुप्ति प्राप्त की जाती है, यदि बोलने के भाव नहीं करना, ऐसी जो वचन गुप्ति है, या कि सब प्रकार से बुद्धिपूर्वक विचार करने का ही त्याग कर दिया, वह मन गुप्ति है, वह तो बहुत दुर्लभ है। लेकिन सत्य धर्म और भाषा समिति का पालन एक श्रावक भी और साधु जन तो करते ही हैं, ऐसा नहीं समझना कि ये मामला तो साधु जनों का है वो जाने। सत्य धर्म आने वाला है, श्रावक 10 लक्षण पर्व करते हैं कि नहीं करते, मुनि जन तो 10 लक्षण पर्व उनके निरंतर ही है। ये 10 दिन तो श्रावक उन 10 धर्मों की साधना करता है जितनी उससे बनता है यथा शक्ति। उसमें एक सत्य धर्म भी है जिसका अभ्यास, जिसको पाने का प्रयत्न श्रावक भी करता है। आचार्य भगवंतों ने उपदेश दिया है कि जो सज्जन पुरुष हैं उनके सामने धर्म की चर्चा करना, धर्म के वचन बोलना, यह सत्य धर्म है। सज्जन पुरुषों के सामने जो हमारी बात का नेगेटिव नकारात्मक अर्थ नहीं निकालेंगे, उल्टा अर्थ नहीं निकालेंगे, उनसे बात करने के लिए जब हम वचन का प्रयोग करें तो वो सत्य धर्म का पालन करना। लेकिन हमें नहीं मालूम कि कौन हमारी बात का क्या अर्थ लेगा, उसे सापेक्ष रूप से कथन करने की जो शैली साद्वाद है उस साद्वाद को ध्यान में रखकर हित मित प्रिय वचन बोलना, भाषा समिति पूर्वक बोलना, यह उपदेश आचार्य भगवंतों ने किया।
क्यों भाषा समिति ये कहना पड़ी
पता नहीं, तुम्हारे कुछ बोलने से लोग अलग अर्थ ले लें, आधा सुने और चले जाए। अगर एक बार ऐसा हुआ था, उपदेश देने वाले ने उपदेश दिया कि मंदिर मत जाओ, बस जनाब इतने ही सुन करके खुश चले गए। ठीक तो कहा, वहां भी उपदेश करने वाले कह रहे थे कि मंदिर नहीं जाओ, तुम और जबरदस्ती घर कह रहे थे कि मंदिर जाओ मंदिर जाओ। देखो हम तो उपदेश सुन के आए कि मंदिर नहीं जाओ, लेकिन भैया ने उसके बाद की लाइन नहीं सुनी, अगर तुम शुद्ध नहीं हो, नहाए धोए नहीं हो तो। अब जी इतना अर्थ कौन बताएगा उनको, आधी अधूरी बात सुनता है, जैसी सुनी है वैसा अर्थ नहीं लेता, क्योंकि शब्दों की निर्धन दुनिया में अक्सर कुछ ऐसा होता है, कहते कुछ और अर्थ कुछ और हुआ करता है। शब्दों का तो बड़ा कहना चाहिए अर्थ बता सकें या उसमें से अपन अर्थ निकाल सकें, ये अपने अपने एटीट्यूड पर निर्भर करता है। शब्द तो शब्द है, संख्यात ही है, ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम उसका कैसा अर्थ निकालते हैं। तो जरा सावधान होकर के बोलना, पता नहीं तुम्हारे शब्दों का क्या अर्थ कौन निकाल ले। तो भाषा समिति रख दी कि हित कर बोलना, इंटेंशन अपने भीतर दूसरे के अहित का ना हो, दूसरे के कल्याण का ही हो वचन बोलते समय। मिट टू द पॉइंट प्रीशियस, जितना आवश्यक है उतना ही बोलना। जैसे टेलीग्राफ में अपन 6 शब्द के बाद 50 पैसे लगेंगे अगर 1 शब्द और लिखोगे तो सोच समझ के वाक्य लिखते हैं कि कम से कम शब्दों में अपना पूरा मैसेज चला जाए। ठीक ऐसे ही परिमित शब्दों में अपनी बात कहना, अनर्गल प्रलाप नहीं करना, जिसमें कि घंटे भर तो वचन व्यवहार किया और काम की चीज तो 5 ही मिनट की थी, तो 55 मिनट आपने वेस्ट किए अपने ही नहीं। विनोबा तो कहते थे कि सच्चे वक्ता की परिभाषा यह है कि जो बोलने से पहले कितनी देर बोलूंगा उतने में जितने लोग सुन रहे हैं उनका गुणा करता है। मैं 20 मिनट बोलूंगा और 1000 लोग सुन रहे हैं तो 20,000 मिनट बोलूंगा। एक एक व्यक्ति के 20 मिनट हो गए तब मुझे 20,000 मिनट का सदुपयोग करना है या दुरुपयोग करना है, ये मेरे ऊपर निर्भर है, ऐसा सोच करके बोलता है तो उसे ही वक्ता कहा। मित बोलेगा आवश्यक जितना है। क्रोध लोभ भीरुत्व हास प्रत्याख्यान अनुविचि भाषणम च पंच, 5 बातों का ध्यान रखेगा कि मैं क्रोध के वशीभूत नहीं बोलूं, मैं लोभ के वशीभूत होकर के वचनों का प्रयोग नहीं करूं, मैं भयभीत होकर के वचनों का प्रयोग नहीं करूं, मैं हंसी मजाक में वचन नहीं बोलूं। अपन कहते कि भैया अबे तो हंसी हंसी में कह रहे हो फिर फंस जाओ, होता है फिर कैरिफिकेशन देना पड़ता कि हमने तो मजाक में कही थी, हमने तो हंसी में कही थी, अब लियो। और अनुवीची भाषण, सोच विचार के आगम सम्मत वचन का उपयोग करना, ये 5 बातें वचन का व्यवहार करते समय ध्यान में रखना। बोलना भी सीखना पड़ता है, वचन व्यवहार भी आसान नहीं है। नहीं बोलना वह भी आसान नहीं है, नहीं तो हमाओ तो मौन है बस, और बाकी तो सब कुछ भीतर विचार ही चल रहा हो कि बोल लेते, सु बोल भी लिया इशारा करके कि त्याओ और फलानी चीज परसों बता भी दिया, जानी चाने बाय चाने से चारों कर दो को जल इशारे इत्यादि करके अपन क्या मौन धारण कर पाएंगे। मौन का अर्थ आचार्य भगवंतों ने लिखा कि पशु के समान नहीं बोलने का अर्थ मौन नहीं है, आगम के अनुरूप वचन बोलने का नाम मौन है। अनुवीची भाषण रखा हुआ है कि मैं आगम सम्मत ही बोलूंगा, आगम की विपरीत जो चीज चली जाए वो नहीं बोलूंगा, ऐसे व्यवहार को भाषा समिति और के अनुसार बोलना कहलाएगा। इतना सब आचार्य भगवंतों ने सत्य के अंतर्गत रखा। इस स्थूल श्रावक के लिए ये तो हो गया मुनि महाराज को बहुत उत्कृष्ट, इसकी अपन भावना भाएंगे, जितना अपन से बनेगा उतना करेंगे, लेकिन श्रावक क्या करे। जैसे कि कल आचार्य भगवंतों ने अपन पर कृपा करके चार प्रकार की हिंसा में से सिर्फ संकल्पी हिंसा से बचने का उपदेश दे दिया था। त्रश हिंसा को त्याग तथा थावरण संहार, मैं अहिंसा अनुव्रत का पालन करूंगा तो कम से कम इतना तो विचार रखूंगा कि त्रस जीवों को संकल्प पूर्वक ना मारूं, मेरे घर गृहस्थी के कामों में मैं सावधानी रख करके और स्थावर एक इंद्री जीवों के भी विघात में कारण न बनूं, ऐसा विवेक पूर्वक अपना आचरण करेगा तब अहिंसा पालन हो पाएगी, अनुव्रत पालन हो पाएगा। ठीक इसी तरह सत्यानुव्रत के पालन करने वाला किस प्रकार से अपने जीवन में सच बोले या वचन का प्रयोग करे, तो आचार्य भगवंतों ने लिख दिया स्थूल मलीकम न वदति न परान वादयति सत्यमपि विपदे यत्तद्वदन्ति संता स्थूल मृषावाद वैरमणम। अगर किसी को सत्य अनुव्रत अंगीकार करना है तो वो कम से कम जानते हैं कि ये झूठ है तो न स्वयं बोले न दूसरे से बुलवाए। बताइए बहुत कठिन है, सच बोलना ज्यादा आसान है लेकिन झूठ बोलना बहुत कठिन है। बड़ा याद रखना पड़ता है कि कब कहा था, क्या कहा था, किससे कहा था, क्या कहा, कैसा कहा था, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। याददाश्त बहुत मजबूत होगी वही बोल पाएगा झूठ, क्योंकि उसी को मालूम है कि सच क्या है जब तुम बोल रहे हो झूठ। झूठ बोलने वाले से सच जानने वाला, सच जानने वाला भी शायद गड़बड़ा जाएगा, इतना सच वो जानता है जो झूठ बोलता है। तब तो बोल रहा है वो, उसे मालूम है कि ये झूठ है, सच क्या है ये वो जानता है। तो आचार्य भगवंतों ने लिखा कि ना तो स्वयं झूठ बोलेंगे ना दूसरे से बुलवाएंगे, बोलने तक का भाव नहीं करेंगे, वरना फिर रौद्र ध्यान तो दिन भर चलता, हिंसा वो मृषानंद प्लानिंग चलती रहती है। कोर्ट में जो अपन झगड़ा करते हैं उसमें क्या करते हैं, चार वकीलों से पूछ करके प्लानिंग करते हैं कि कैसे हम झूठी मूठी बोल करके वो फंसाएंगे दूसरे को। जी प्लानिंग चलती रहती कि नहीं, वर्षों, कौन सी कषाय आप विचार कर लो, छह महीने से ज्यादा चले तो अनंतानुमंदी कषाय है, और जहां अनंतानुमंदी कषाय है उसे सम्यक दर्शन गायब। अब विचार कर लो, सच्चे देवभूत शास्त्र के प्रति श्रद्धा भी है, वीतराग भगवान के चरणों की सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन केस लड़ रहे हैं वर्षों वर्षों, आपके भीतर कौन सी कषाय का उद्रेक है जो छह महीने से ज्यादा तक आपके भीतर दूसरे का घात करने का, दूसरे को तकलीफ पहुंचाने का भाव निरंतर बना हुआ है। दूसरे से झूठ बोलने में आनंद मान रहे हैं, विचार करते थे ऐसा बोलूंगा तो सामने वाला फंस जाएगा, हाँ बढ़िया रहेगा भाई तुम बोलो ऐसे ही बोलो, चार जने और बैठ गए कहने हाँ ऐसे ही बोलो, चलो समझ में आए। अब लो अब जी तो कोई बात नहीं हुई, अपने अपने में नरक का रास्ता बता रहे, दूसरे के लिए तो ठीक ही है, उनको तो जो कच हुई है उनको तो पुण्य पाप है। रावण ने बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करी थी, कौन को मारवे राम को, कछु कर पाए, कछु नहीं होता, बिना पाप के उदय के रामचंद्र जी का कुछ नहीं बुलाता, इतना पुण्य का उदय था। पुण्यात्मा जीव के लिए आप कितना भी उपद्रव कर लो, उसके लिए आपके उपद्रव से तो आपको ही शिक्षा मिल जाएगी, जैसे कि कमठ महाराज ने 10 भाव तक पारसनाथ पर उपद्रव किया था और आखिरी में पारसनाथ तो हो गया केवल ज्ञान, मनो कमठ को भी सम्यक दर्शन हो गया, तब अपनी अकल आई कि अरे हम गलती पे हते। बताओ भैया
इतना विचार करना चाहिए जब हम झूठ बोले और दूसरे को तकलीफ पहुंचाने का भाव अपने भीतर हो कि अरे मैं दूसरे का बिगाड़ तो बाद में करूंगा, मैं तो अपने परिणामों से अपना नरक स्वयं निर्मित कर रहा हूं, इससे कौन बचाएगा मुझे। मैं हिंसा में आनंद ले रहा हूं और हिंसा आनंद और नशानंद ये चार प्रकार के रौद्र ध्यान मुझे कहां ले जाएंगे, नरक गति में ले जाएंगे, क्योंकि रौद्र ध्यान के साथ तो आयु का बंध होगा, अगर तो नरक आयु के अलावा और कौन सी आयु बंधेगी। मेरे अंदर मायाचारी के भाव है तो तिरंग आयु के अलावा क्या बंधेगी मुझे। मैं मायाचारी करके और झूठ बोल रहा हूं, इस तरह अगर अपन विचार करें तो अपने वचनों के प्रयोग में अत्यंत सावधानी पूर्वक अपन वचन का प्रयोग करेंगे। भैया हमने तो आपसे कहा था 68 में जब चतुर्मास में हमने छुल्लक दया सागर जी महाराज की सेवा करी, बहुत छोटे थे, सो उनकी एक भजन छपो तो मुट्ठी को बांधे आया हूं मैं हाथ पसारे जाऊंगा, सुश्रावकों ने छपवा के और महाराज के पास रख दो, लड़का बच्चा आवे सो उनको जे दे दिए। उनकी हो गई है, अब हमने भी मांगा उनसे, समय भी दे दिया उनने वो कागज जिसमें लिखा था। हमने कि महाराज ऐसा नहीं, कछु लिख के दो, आप अपने हाथ से अपने दस्तखत ही कर दो, ऐसा करते बच्चे। अब आजकल ऑटोग्राफ कहलाते बड़े बड़े लोगों के, पहले दस्तखत का उठते कि भैया दस्तखत कर दो आप अपने, क्या हो महाराज से लो, हम ऐसे उठा नहीं लिया, नहीं तो हमें डांट पड़े कि तुम महाराज के पास उठा लिया, नहीं महाराज ने दो है हम उठा थोड़ी लाए। तो उनने क्या लिखा था जो मैं कहना चाह रहा हूं वो आज तक याद है, सच बोलने के लिए हां और झूठ बोलने के लिए ना, घृणा से बोलने के लिए ना और प्रेम से बोलने के लिए हां। इतना ही पर्याप्त है कि मैं जब मेरा मन घृणा से भर करके बोलने को उत्सुक हो मैं मौन रह जाऊं, क्योंकि मेरा तो घृणा से बोलने के लिए त्याग है। जब मेरा मन अत्यंत करुणा भाव से और प्रेम से भरा हुआ हो, दूसरे का हित करने का हो, तब बोलूं, कोई मनाही नहीं है। प्रेम से बोलने के लिए हां, अगर इतना ही अपन संकल्प कर लें तो अपने वचन व्यवहार को अपन संभाल सकते हैं और सत्याणु व्रत का पालन आसानी से कर सकते हैं। आचार्य भगवंतों ने यहां तक लिखा कि सत्यमपि विपदे, सच भी नहीं बोलना अगर दूसरे पर विपत्ति आ जाए या स्वयं का घात हो जाए तो। बताइए, विपत्ति आने पर सच भी नहीं बोलना बहुत कठिन है। इच्छा तो बहुत होती कि फंसवाना है इनको, हम सच्ची जाना थे, जिसको अपन आई विटनेस कहते हैं, हमारे सामने सामने हुई है घटना, लेकिन आप ऐसा करके उसे तो थोड़ा बहुत जो भी दंड है वो आप दे देंगे, लेकिन उसका आपके प्रति विश्वास तो समाप्त हो गया, उसका आपके प्रति प्रेम भाव तो खत्म हो गया। और अगर जैसे कि सेठ जिनदत्त ने, ब्रह्मचारी ने चोर बनकर, चोर ने ब्रह्मचारी बनकर के और उनके मंदिर में से मणि चुरा के भागा था, तब सैनिकों ने पकड़ करके सेठ जी के पास ले जाकर के कहा कि देखो तो ब्रह्मचारी जी मणि चुरा रहे थे, चुरा के भागे, देखो हाथ में है। तो सेठ जी ने क्या कहा था कि नहीं नहीं उनने चुराई छोड़ू है, हमने मंगाई थी सुले आए भी। अब बताओ इसमें कौन सा सच है, झूठी है, लेकिन उसमें भी उसको भी झूठ को भी नहीं, चार लोगों के सामने हमारे इस ब्रह्मचारी वेश की अवमानना हो जाएगी। उस भाव से सबसे तो ये कह दिया कि जाओ तुम लोग ने माफी मांगो ब्रह्मचारी जी से, बेकार में पकड़ के लाए, हमने तो उनसे मणि मंगाई थी, तब तो बोले क्या वो चुरा थोड़ी रहे थे, ऐसा बोल दिया। और फिर धीरे से कमरे के भीतर ले जाकर के कान पकड़ के कहा कि काय भैया तुम ब्रह्मचारी हो, अच्छा नहीं लगा तुम्हें जो चुरावो। धीरे से तो उसने हाथ जोड़ लिए कि भगवान मैं तो झूठ मूठ इसी मणि को चुराने के लिए ब्रह्मचारी बना था, अब आप वास्तव में मुझे ब्रह्मचारी बना दो। उसके परिणाम इस घटना से बदल गए कि देखो पंडित सेठ जी ने हमारी रक्षा करी, वरना हमारी क्या दुर्गति होती जेल में। हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो उसे बदलने का, अपने को अच्छा बनाने का अवसर देते हैं। इसलिए आचार्य ने लिखा कि सत्यमपि विपदे, दूसरे के प्राणों का घात होते देख करके सच भी नहीं बोलना, मौन रह जाना, तब तुम्हारे वचन के प्रयोग को तुम समीचीन है ऐसा कह सकोगे, तब तुम्हारे भीतर सत्याणु व्रत आया है ऐसा कह सकोगे। 10 प्रकार की जो कर्कश इत्यादि अहंकारवश बोली जाने वाली भाषा है, दूसरे के मर्म का भेद करने वाली भाषा है, ऐसी 10 प्रकार की भाषा का उपयोग न करना। ककसा, परुसा, कठोर वचन नहीं बोलना, अहंकारी भाषा नहीं बोलना, मर्म भेदी भाषा नहीं बोलना, ऐसी 10 प्रकार की भाषा का आचार्यों ने उल्लेख किया। सीधा अपन कहें कि जब भी बोलूंगा मैं प्रेम से बोलूंगा, दूसरे के हित के लिए बोलूंगा, अन्यथा मेरा वचन का प्रयोग तो व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए मैं वचन का प्रयोग भी नहीं करूंगा। अपन को स्वयं विचार करना चाहिए कि जिस जिब्बा के द्वारा सुबेरे से वो बढ़िया पाठ पाठ करते हैं भगवान के सामने प्रभु पतित पावन, और उन्हीं मुंह से मैं अपशब्द बोलूं। जिब्बा तो मैंने अपवित्र कर दी, अब क्या भगवान का नाम लेने लायक वो जिब्बा रह गई, ऐसा विचार करूं मैं असत्य बोलने से पहले, कि इसी जिब्बा से मैंने सुबह भगवान की भक्ति की है और अब इसी जिब्बा का प्रयोग मैं दूसरे के अहित में कर रहा हूं, क्या मेरा व्यवहार ठीक है, अब मैं उस योग रह गया हूं जो कि शुभ वचन बोलूं। अपने आप ही अशुभ वचनों पर नियंत्रण हो जाएगा अपना, अपन को यही तो करना है भैया, यही तो सीखना है। कौन क्या कर रहा है इससे हमारा कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि वी आर नॉट वॉन्ट टू सॉल्व द अदर्स प्रॉब्लम। हम दूसरे के मामले में दखल देने के लिए पैदा नहीं हुए, न दूसरे की प्रॉब्लम हम सॉल्व करने यहां आए हुए हैं। हमारे अपने जीवन की इतनी प्रॉब्लम है वही तो सॉल्व कर लें, तो दूसरे के बारे में हम इन दिनों में धर्म ध्यान कर रहे हैं तो विचार ही नहीं करेंगे, वो अपना नरक स्वयं बनाए, हम कौन होते हैं। अगर हमसे पूछेगा तो हम जवाब देंगे, वरना हम कुछ भी, कोई रिएक्शन, नो रिएक्शन एट ऑल, कोई रिएक्शन नहीं। थोड़े समय के लिए जैसे मुनि महाराज अप्रतिकार को धारण करते हैं कि चाहे तलवार मारो और चाहे माला पहनाओ, ना एक्साइट होंगे ना डिप्रेस होंगे, निष्प्रतिकार, जबकि प्रतिकार करने की सामर्थ्य है, उसमें लिखा कि प्रतिकार करने की सामर्थ्य है, लेकिन फिर भी जीवों पर दया भाव धारण करके करुणावश वे कोई भी रिएक्शन नहीं करते, ये उनका व्रत है। उसका थोड़ा सा तो अपन शावक भले ही है, पर थोड़ा सा तो अपन भी संदेश लें कि हमें भी वैसा ही आचरण करना है, उन्हीं के चरणों पर, चरण चिन्हों पर चलना है। अनुव्रती हूं मैं महाव्रती के ही कदमों पर चलने के लिए तो अनुव्रत धारण किए हैं, वही तो शिक्षा लेऊंगा मैं, ऐसा विचार करके सत्यानुव्रत को धारण करने वाला और सामान्य गृहस्थ भी दोनों ही ऐसे वचनों की साधना करते हैं। 10 प्रकार के वचन तो अपन हमेशा बोलते हैं जो सत्य में आते हैं, जैसे कि देश सत्य या कि जनपद सत्य। अलग अलग देशों में अलग अलग शब्दों का एक ही चीज के लिए उपयोग होता है। जैसे अपन लोग बात बोलते हैं लेकिन कहीं कहीं पर उसी के लिए चोरू बोलेंगे, वो भी बात के लिए सूचक है, कोई कोई उसके लिए कूल बोलेंगे। अलग अलग शब्दों का प्रयोग एक ही वस्तु के लिए किया जा रहा है, पर वो सत्य है, जनपद सत्य है या कि देश सत्य है। अपन इस सम्मत सत्य भी बोलते हैं, राजा साहब हैं तो उनकी जीवन साथी को फोकट में ही बिना उसके अपन रानी साहिबा कहने लगते, सेठ भी हैं तो उनकी जीवन साथी को सेठानी कहेंगे। ये सच है, कौन सा सबकी सम्मति है इसमें, इसकी सम्मत सत्य है। ऐसे वचनों का प्रयोग तो अपन करते ही हैं, फिर स्थापना मूर्ति में अनंत भगवान की कर दी, वैसे तो पत्थर है लेकिन मेरी श्रद्धा में तो वीतराग हितोपदेशी सर्वज्ञ अनंत भगवान है। मैं उसमें अनंत भगवान की स्थापना करके उस प्रतिमा को अनंत की प्रतिमूर्ति ही मानता हूं, या साक्षात तो नहीं है अनंत पर उनकी प्रतिमूर्ति को ही अनंत मान करके उन्हें जो भी सम्मान देना है वो सम्मान देता हूं। ये स्थापना सत्य है। इतना ही नहीं, किसी व्यक्ति का नाम अशोक रख देते हैं, किसी व्यक्ति का नाम महावीर रख देते, भले ही बहुत कमजोर हो लेकिन महावीर नाम है, अब बताओ ऐसा रख देते नहीं, ये भी सत्य है कि नहीं। कोई दिन भर रोता ही रहता हो लड़का बच्चा और उसका नाम अशोक, न शोका विद्यते यश साहसोका, वैसे अशोक का अर्थ तो है कि जो रोए ने जो उनको कसु शोक न हुए, लेकिन भैया रोज रो उतरे फिर भी अशोक नाम, ये सत्य है। इस तरह के सत्य भी नाम सत्य कहलाते हैं, अपने कर्मों का फल भोगते हुए। कौन छोटा है, किसको बड़ा कहें और किसको छोटा कहें, लेकिन अपन इस तरह के सत्य का भी उपयोग करते हैं जो रेसिप्रोकल है, कंपेयर करते हैं एक दूसरे की अपेक्षा से, कह देते हैं कि ये छोटा है ये बड़ा है, या ये नया है ये पुराना है, ये प्रतीत सत्य है। इतना ही नहीं, व्यवहार में भी अपन जो बोलते हैं उसमें जरा देखें, अपन वैसे तो पकाते हैं चावल लेकिन क्या कर रहे, भात बना रहे, अरे तो बनाए की बात कहां है, भात क्या वही बन गए भात, लेकिन बोलने में क्या आता है, व्यवहार में क्या आता है, भात बना रहे। अब चावल चो रहे हो कह रहे भात बना रहे, बनो बनाओ भात चो रहे नहीं, भात बना रहे, ये व्यवहार से हमारा सत्य कहलाएगा। इतना ही नहीं, इंद्र महाराज के अंदर इतनी शक्ति है, सामर्थ्य है कि वो चाहे तो डमरू के समान तीनों लोगों को उलट पलट कर सकते हैं, लेकिन अपनी सामर्थ्य का प्रयोग नहीं करते। उनके भीतर संभावना तो है, इतनी शक्ति उनके पास है, ये संभावना सत्य कहलाता है कि हमारे भीतर योग्यता है, क्षमता तो है, संभावनाएं हैं, हम ऐसा कर सकते लेकिन नहीं करेंगे, ये अलग बात है, वह भी सच्चाई है। और भाव सत्य भी है, चोर को भी चोर नहीं कहना, अंधे को भी अंधा नहीं कहना, अपन नहीं कहते, अपन प्रज्ञा चक्षु बोलेंगे, ये सूरदास जी बोलेंगे, वचन से ही व्यक्ति कैसा है ये मालूम कर जाता है उसके वचन बोलने से। आपको सबको मालूम है, एक भिखारी रास्ते से चला जा रहा था, राजा साहब की सवारी आने वाली है, तो एक पुलिस वाले व्यक्ति ने, पुलिस वाले बुरे नहीं मानी हो भैया, अब क्या करें होते ही है वैसे ही, तो पुलिस वाले व्यक्ति ने, उनको सीखना पड़ता वैसा, तो उसका हाथ पकड़ के और रास्ते के बाजू में किया, चल हट अंधे, राजा आ रहे हैं। हट गया वो बेचारा, एक तो गरीब शरीफ था, भिखारी था, और दोनों आंखों में रोशनी नहीं थी। उसने कहा ठीक तो कह रहे हैं, हट जाते हैं, हट गए। उसके बाद अभी राजा साहब नहीं आए, उनका मंत्री जी आए, तो मंत्री जी ने कहा बाबा यहां तो राजा की सवारी निकलेगी, जनता आपके ऊपर से निकल जाएगी, आप थोड़ा सा रास्ते के और किनारे बैठ जाए तो अच्छा रहेगा। मंत्री जी ने भी ये कहा, और जब राजा साहब ही आ गए तो राजा साहब ने उस भिखारी को देख करके कहा कि सूरदास जी थोड़ा सा नीचे की अपेक्षा उस चबूतरे पर विराजमान हो ताकि कोई आपको कुचल न दे, आपको तकलीफ न पहुंचा दे। तो फौरन सूरदास ने कहा राजा साहब प्रणाम। राजा साहब प्रणाम, हम तो देख ही नहीं पाते और आप कह रहे थे हमारी दोनों हाथ से नहीं देखता, आपने कैसे समझ लिया कि हम राजा साहब हैं, इतने लोग तो आए आपने क्यों नहीं कहा मुझसे राजा। बोले मैंने वचन से ही समझ लिया, सबसे पहले जो आया था वो तो पुलिस वाला ही होगा, ऐसा ही बोलता है।
दूसरे नंबर जो आए थे वो आपके मंत्री जी थे, हम खुद ही आए, आपके वचन से ही मालूम पड़ गया कि राजा साहब आए। भैया वचन व्यवहार से व्यक्ति कैसा है ये अपने आप मालूम पड़ता है कि कैसे वचन अपन उपयोग में लेते हैं, अपने जीवन को अपन ने क्या दृष्टि दी है, कैसा बनाया है। और उपमा सत्य है, अपन कह देते हैं कि भैया आपकी सुंदरता बहुत है, जैसे कि चंद्रमा सुंदर होता है ऐसे ही आप सुंदर हैं। जैसे कि अपन जब नापते हैं अपनी क्षमता से बाहर हो जाता, पढ़े लिखे कमती हैं तो 20 से ज्यादा की गिनती नहीं आऊ, तो 20 को मान लिया एक मापदंड। और कितनी बिसी हो गई, 5 बिसी, अब सो नहीं जा, सुकेले 5 बिसी हो गई। अब बताओ मैंने 20 में 5 को गुणा करके तुम ही निकाल लो, 100 हो गए, हम नहीं जाने, हम तो 20 जाने। ये उपमा सत्य है, मापने के लिए अपन ने इस तरह से उपमाओं का प्रयोग कर लिया। ऐसे सत्य का प्रयोग तो अपन करते हैं, लेकिन उसमें सावधानी किस बात की है कि दूसरे का अहित ना हो, और हमारे जीवन में हम वचन व्यवहार भी कर सकें, वरना कदम कदम पर अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा का ही सहारा लेना पड़ता है। लेकिन उस भाषा के सहारा लेते समय सिर्फ अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए लिया है, दूसरे का अहित करने के लिए भाषा का उपयोग नहीं करें। इतना अपन ध्यान में रख करके और इस सत्यानुव्रत को आसानी से पालन कर सकते हैं और अपनी भाषा को संभाल सकते हैं, अपने वचनों को संभाल सकते हैं। एक छोटी सी घटना शायद सबको याद होगी, वो अपन समझ लेते हैं और इतना ही रखते हैं। एक बाबा जी मुनि महाराज जी, बाबा जी नहीं मुनि महाराज जी, तो मुनि महाराज जी जंगल में तपस्या कर रहे थे, ध्यान में लीन थे। अचानक उन्होंने देखा कि उनके बाजू से एक गाय बहुत तेजी से दौड़ते हुए आगे निकल गई। उस गाय के जाने के 2 मिनट बाद ही एक व्यक्ति उनसे पूछता है कि आपने कोई गाय तो नहीं यहां से निकलते देखी। समझ गए उसके पूछने के स्टाइल से कि मालिक नहीं है गाय का, गाय को मारने वाला है। अरे इसको गाय का ठीक ठिकाना पता देना तो ठीक नहीं है, ऐसा क्षण भर में विचार कर लिया, क्या करूं, मेरे तो सत्य धर्म है, इससे असत्य भी नहीं बोल सकता हूं, और असत्य बोलूं वो भी ठीक नहीं, और अगर सत्य बोलूं तो गाय का मरण हो जाएगा, अब क्या करूं, वचन का प्रयोग कैसे करूं। उन्होंने फौरन खड़े हो गए, जवाब तो देना है। जिस स्थान पर वो त्याग तपस्या करते हुए पद्मासन में बैठ करके ध्यान लगा रहे थे, उसी स्थान पर खड़गासन में खड़े होकर के कहा कि भाई जब से मैं खड़ा हूं तब से तो यहां कोई गाय नहीं निकली, जब बैठा था निकली, वो जब नहीं कह सका प्रयोग भी कर लिया वचन का और जीव की रक्षा भी कर ली। भाई अपने वचनों के प्रयोग के समय अपन कम से कम इतनी तो सावधानी रखें कि मेरे वचन प्रयोग से मेरा भी अहित ना हो और प्राणी मात्र की सुरक्षा हो जाए तो ही वचन बोलूं, अन्यथा वचन इसलिए नहीं मिले हैं मुझे, 2 इंद्री से वचनों का प्रयोग होता है लेकिन हम तो संगी पंचेंद्री और विवेकवान है तो अपने वचनों का प्रयोग अपन समझ करके कर सकते हैं। पशु तो बोल भी नहीं सकता लेकिन वो भी जानता है कि कौन कैसे बुला रहा है, वो भी भाषा समझता है प्यार की और देश की, और अपन तो देश पूर्वक भाषा का त्याग भी कर सकते हैं। भैया इतना ही अपन कर ले कि असत्य नहीं बोलेंगे, और जब ऐसा सत्य भी नहीं बोलेंगे जिससे दूसरे का घात हो जाए, जब भी बोलेंगे हित मित और प्रिय वचन का ही उपयोग करेंगे, ऐसी भावना के साथ कि हम अपने वचनों को ठीक ढंग से प्रयोग करके सत्यानुव्रत पालन कर सकें। बोली आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि
के गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है,
जो जग दिशित
शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता हूँ,
शांता श्री
निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो।
तेरे तेज का प्रसाद मेरे पथ पर तलवार साकी मेरियां हैं।
समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की गलियों में।
तेरे जाते मारे
भवबंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां।
तुम सामने क्या कोई
दिन रात लुटाया करते हो शम शम की अविनश्वर मणियां। ये शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम। प्रकाश वेखो आपा पर भास वेखो भानु शिव कानी है। जीवों के जताए वेखो काउ न सकाए वेखो भव्य और आनी है। सुवाणी मस्तक नमो सदा दे तू हे दिनवाणी भारती तोग जपो दिन रेन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन।